आयत नंबर 111, 111 सूरत अल अनाम से ये पारा शुरू होता है। वलौ अन्ना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता वकल्लमहुमुल मौता वहशरना अलैहिम कुल्ल शैइन कुबुला। और अगर हम इनके पास फरिश्तों को भेज देते और इनसे मुर्दे बातें करने लगते और हम तमाम मौजूदात को इनके पास इनकी आंखों के रूबरू लाकर जमा कर देते, तब भी ये लोग हरगिज़ ईमान न लाते। बात समझ आ गई आपको? अल्लाह ने बात सच कह दी। हाँ, अगर अल्लाह ही चाहे तो और बात है, लेकिन इनमें से ज्यादा लोग जहालत की बातें ही करते हैं। और उनकी ये जहालत की वजह क्या है? वकज़ालिका जअलना लिकुल्लि नबिय्यिन अदुव्व शयातीन इंसि वल जिन। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बहुत से शयातीन पैदा किए थे, कुछ आदमी और कुछ जिन, जिनमें से बाज़ों को चिकनी चुपड़ी बातों का वसवसा डालते रहते थे ताकि इनको धोखे में डाल दें। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ये ऐसे काम न कर सकते थे। बस इनको और जो कुछ इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं इसको अब रहने दीजिए, और ताकि इसकी तरफ इन लोगों के कुलूब माइल हो जाएं जो आखिरत पर यकीन नहीं रखते, और ताकि इसको पसंद कर लें और ताकि मुर्तकिब हो जाएं इन उमूर के जिनके वो मुर्तकिब होते थे। और लिहाजा इनकी इन बातों को छोड़िए। सवाल क्या है? अफ गैर अल्लाह ही अब्तगी हकमम, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और फैसला करने वाले को तलाश करूं? हालांकि वो ऐसा है कि इसने एक किताबे कामिल तुम्हारे पास भेज दी है, इसके मजामिन खूब साफ साफ बयान किए गए हैं, और जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इस बात को यकीन के साथ जानते हैं कि आपके रब की तरफ से हक के साथ भेजी गई है। बस आप शुबा करने वालों में से ना हो जाएं। और अगली आयत हाईलाइट कीजिए, इस पारे के थीम को बहुत खूबसूरती से वाज़े करने वाली आयत। वतम्मत कलिमतु रब्बिका सिदकं व अदला, आपके रब का कलाम सच्चाई और इंसाफ के एतबार से कामिल है, इसके कलाम को कोई बदलने वाला नहीं, और वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और दुनिया में ज्यादा लोग ऐसे हैं कि अगर आप इनका कहना मानने लगे तो वो आपको अल्लाह ताला की राह से भटका दे। इसको हाईलाइट करें। मेजॉरिटी इज नॉट अथॉरिटी, जमहूरियत का रद्द है इस आयत में। डेमोक्रेसी इज नॉट इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, क्योंकि अक्सरियत तो ख्वाहिशों की पैरवी कर रही होती है, और वही इलाही तो ख्वाहिशों को कुचलने का नाम है। लिहाजा फरमाया, वो महज बेअसल ख्यालात पर चलते हैं और बिल्कुल क्यासी बातें करते हैं। इन्ना रब्बक हुवा अलमु मन यदिल्लु अन सबीलिक, बिल यकीन आपका रब इनको खूब जानता है जो इसकी राह से बेराह हो जाता है, और वो उनको भी जानता है जो इसकी राह पर चलते हैं। अब आगे यहाँ से मुशरिकीने मक्का की वो फरसूदा बातें जिसकी वजह से सूरतुल अनाम का नाम अनाम है, इसको तुम ना खाना, इसको वो ना खाएं, इसको मर्द ना खाएं, इसको औरतें ना खाएं, कभी देखा तो नहीं लेकिन सुना है कि रजब में कुछ कुंडों के नाम की एक रस्म होती है जिसके बारे में कुछ इंडो पाक कल्चर में भी ऐसी ही बातें हैं, इनको औरतें खाएंगी, मर्द नहीं खाएगा, 10 बीवियों की कहानियां वगैरह। तो ये आज के दौर की खुराफात और बिदात है जो अब हम पढ़ने लगे हैं, ये अरबों के उस दौर की खुराफात है जब कुरान नाजिल हो रहा था। फरमाए फकुलु मिम्मा ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैह, बस जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया जाए इसमें से खाओ अगर तुम इसके काम पर ईमान रखते हो। और असल बात क्या है कि तुम क्यों नहीं खाते? वमालकुम अल्ला ताकुलु मिम्मा ज़ुकिरा इस्मुल्लाहि अलैह, और आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसे जानवरों में से ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, हालांकि अल्लाह ताला ने इन सब जानवरों की तफसील बता दी जिनको तुम पर हराम किया है। कहाँ बताई? सूरत मायदा के शुरू में। मगर वो भी जब तुम्हें सख्त जरूरत पड़ जाए तो हलाल है। और ये यकीनी बात है कि बहुत से आदमी अपने ख्यालात पर बिना किसी सनद के गुमराह करते हैं, यानी अल्लाह की शरीयत के मामले में कन्फर्म चीज़ को छोड़कर सिर्फ एजम्पशन पे चलते हैं। कन्फर्म टिकट नहीं, चांस का टिकट, ख्यालात। आज दुनिया में एक फॉर्म भी फिल करते हैं ना तो एक खाना भी खाली रह जाए तो कहते हैं नहीं एप्लीकेशन सबमिट हो गई। लेकिन दीन के मामले में अक्सर लोगों का हाल क्या है कि वो अपनी मर्जियों को दीन और क्या कहते हैं उसने कहा, कहते हैं भी किसने कहा, कीलो काल लिख लीजिए, काल अल्लाह व काल रसूल, ये दो लफ्ज बड़े बड़े लिख लें, काल अल्लाह व काल रसूल का नाम दीन है, बाकी कीलो काल है, आपने कहा, मैंने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए फरमाया कि अपने ख्यालात पर बगैर किसी सनद के गुमराह करते हैं। इसमें कोई शुबा नहीं कि अल्लाह ताला हद से निकल जाने वालों को खूब जानता है। लिहाजा अब क्या करो, वज़रु ज़ाहिर अलिस्मी व बातिना, और तुम जाहरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातनी गुनाह को भी छोड़ दो। बिला शुबा जो लोग गुनाह कर रहे हैं इनको इनके किए की सजा अन करीब मिलेगी। अब इनको हुक्म क्या दिया जा रहा है, वला था कुलुमे माल लम यूज कर इस्मुल्लाह ही अलैहि व इन्नहु लफिस्क, और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह का नाम ना लिया गया हो, और ये काम नाफरमानी का है। और यकीनन शयातीन अपने दोस्तों के दिल में डालते हैं ताकि ये तुमसे जिदाल करें, और अगर तुम इन लोगों की इताअत करने लगो तो यकीनन तुम मुशरिक हो जाओगे। आप फील करें ना सिर्फ खाने पीने की कमियां बेशियां, और एक नई शरीयत यानी शरीयत बमुकाबला शहवत की शरीयत। एक माशरे में दो शरीयतें चल रही होती हैं, एक वही इलाही की तबा में जो वक्का नबी लेकर आता है, और दूसरी रस्म और रिवाज, खानदान, बिरादरी। आज आप भी देख लीजिए, पांच छह चीजें तो आपके भी कल्चर में बड़ी कॉमन है जिसका इस्लाम में कोई नाम निशान नहीं है। दिल आजारी की वजह से नाम ना लूं तो आप खुद भी समझते ही हैं। आज आप देखिए इस कुरान से जुड़ने, कुरान को समझने, दौरे कुरान से जुड़ने या सबीलुल जन्ना, नूरुल नूर, तफसीर कोर्सेज, तजवीद कोर्सेज से पहले हमारा इंडो पाक में दीन का क्या रंग था? कुरान हनी, मिलाद, खत्म, दुरूद, दुरूद तंजीना, ये सब किधर है? मुझे तो कभी कुरान सुन्नत में नहीं ये दिखा। ये तो अल्लाह सऊदी अरब का भला करे, अल्लाह इनको बेहतरीन जजा दे, इन्होंने अकीदों की पाबंदी कराई हुई है आप लोगों को। हमारे मुल्कों में जितने बुत कब्रों के अंदर लेटे हुए हैं उतने तो शायद हिंदुस्तान में हिंदुओं के भी बुत ना हो। गली गली बाबा है, गली गली बुजुर्ग है, कहीं पीर हैं, कहीं उर्स हैं, कहीं उनके कहानी है। तो इस वजह से आज उम्मत मुस्लिमों को दोबारा रिवाइवल ऑफ फेथ की जरूरत है। इसलिए बड़ी प्यारी आयत है, अब अमन का न मई तनफा जई ना हो जल ना लहू नूरा नूर यमशी भी। ऐसा शख्स जो पहले मुर्दा था, आप अपने आप को जहन में लें, कुरान से पहले की जिंदगी मुर्दगी थी। दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, क्योंकि हमारी रूहें मुर्दा थी, फिर हमने इसको जिंदा कर दिया और हमने इसको एक ऐसा नूर दे दिया कि वो इसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। ये कौन सा नूर है? ये नूरुल कुरान है। लाखों गवाहियां मौजूद है लफ्ज नूरुल कुरान के साथ लोगों की जिंदगियों की बदलने की, हजारों की तादाद में। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया पे आपको भी मिल जाएगा फीडबैक सिस्टर्स का। और मेरे लिए एक एनर्जी ड्रिंक होता है किसी का ये जुमला कि मैं पहले क्या थी और अब मैं क्या बन गई। बस मुझे ना तारीफें सुनने का शौक है, घबराहट होगी, ना किसी की लंबी लच्छेदार बातें, लेकिन जब कोई सिस्टर ये लिखती हैं कि मैं क्या थी और फिर मैंने एक दौरे कुरान सुना और फिर मैं ऐसी हो गई, मैं क्या थी, मैं वो थी, कुरान दिल में रूह डालता है और अल्हम्दुलिल्लाह दिलों में बात अल्लाह डालता है। आपके मेरे इख्तियार में किसी के दिल में बात डालना नहीं है, हम तो अपने आप को हिदायत पे जमा लें तो बड़ी बात है। तो अल्लाह ताला ने इस कुरान को आपके दिलों की जिंदगी बनाया। अगर आप भी इस कुरान के नूर से जुड़े हुए हैं ना, तो ये कभी हो नहीं सकता कि आपकी ज़ात से भी खैर ना फैले। फिर आप पढ़ लिख के घर नहीं बैठ जाते, फिर आप बेअमल नहीं हो जाते, जहाँ से आए थे वैसे ही चले गए। अल्लाह कहते वो इसको लिए हुए आदमियों में चलता फिरता है। ये नहीं कि मस्जिदों में बैठ जाओ, मदरसों में बैठ जाओ, खाना कबा में बैठ जाओ, मस्जिद नबी में बैठ जाओ और तुम नेक हो। यमशी बिही फिन्नास, लोगों में चलते फिरते दीन दिखाओ, तुम चलते फिरते कुरान के लोगों को नमूने दिखो, जैसे अल्लाह के नबी के लिए गवाही थी कि कान अकुलु कहुल कुरान, आप चलते फिरते मोमिन थे। आज हमें ऐसे किरदारों की जरूरत है। पूरे कॉन्फिडेंस से पूरी दुनिया में जाकर दिखाइए कि वी आर मुस्लिम, आई एम मुस्लिमा, कि मेरा गेटअप है, ये मेरा लाइफ स्टाइल है। दाढ़ी रखकर एक मर्द शर्मिंदा ना हो, शलवार टफनों से ऊंची करके मर्द परेशान नहीं। आज लड़कियां घुटने खोल के चलती हैं फैशन के नाम पे, उनको शर्म नहीं आती। आज हमारे मर्दों के टफने क्यों झुके हुए हैं? क्योंकि आज ये नूर नहीं दिया, हमने इस किताब को नहीं पढ़ा। इसलिए फरमाया कि ऐसा शख्स इस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकियों से निकल ही नहीं पाता। इसी तरह काफिरों को इनके अमाल खुशनुमा मालूम हुआ करते हैं। वकज़ालिका जालना फी कुल क़रयत नकाबिर मुजरिमीहा, अब यहाँ से उनकी साजिशों का तذکرہ जो अम्बिया के खिलाफ थी कल और आज हक वालों के खिलाफ है। और इसी तरह हमने हर बस्ती में वहाँ के रईसों यानी पैसे वाले और इन्फ्लुएंशियल और इलीट टाइप के लोग यानी बासर लोग जो थे जिनका माशरे में बहुत ही रोब था, उन्हीं को जरायम का मुर्तकिब बनाया, क्योंकि पैसे और अख्तियार और अथॉरिटी और हुकूमत के साथ अमूमन लोगों में रौनद आ जाती है। क्यों बनाया? ताकि वो लोग वहाँ फरेब करें, और वो लोग अपने ही साथ फरेब कर रहे हैं और इनको ज़रा खबर नहीं। और जब कोई इनको आयत पहुँचती है तो यूँ कहते हैं कि हम हरगिज़ ईमान ना लाएंगे। एटीट्यूड है ये उनका, बस रवैये देख लीजिए। जब तक कि हमको भी ऐसी ही चीज़ ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी जाती है, यानी देखे छोटा मुंह बड़ी बात। कहते थे हमारे पास फरिश्ता आके खुद बताए, हम मोहम्मद की जुबान से नहीं सुनकर मानेंगे, नऊज़ु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मौके को तो अल्लाह ताला ही खूब जानता है कि कहाँ वो अपनी पैगंबरी रखे, यानी अल्लाह को पता है कि अल्लाह वाला मुहैस यह जलूरी सवाल था। अल्लाह ने अपना पैगाम जिनसे लेना होता है ना लेता है, उसके पीछे कोई कैलेंपर होता है, कोई किरदार होता है। याद रखिए सिर्फ इल्म नहीं होता, करेक्टर भी होता है, किरदार भी है, और ये अल्लाह का एक चेक एंड बैलेंस है। वरना तो पता नहीं दुनिया में क्या हालात हो चुके होते। तो अल्लाह कहते मैं जानता हूँ कि मैंने पैगंबरी कहाँ रखी कल, और आज अपना पैगाम किन लोगों से पहुँचवाना था। अन करीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किया है अल्लाह के पास पहुँच कर जिल्लत पहुँचेगी, और इनकी शरारतों के मुकाबले में सख्त सज़ा मिलेगी। तो ये आयात हम सब से कुछ तदब्बुर और अमल का मुतालबा करती हैं। आयात पे अमल के पॉइंट नोट कीजिएगा। हिदायत और साबित कदमी की दुआ करनी है, ताकि अपना मुहासबा करते रहें कि क्या मैं हिदायत से दूर तो नहीं हो रही। मैं आपको मिसाल दूंगी नेविगेटर की। आपको घर का रास्ता मालूम होता है, इसके बावजूद लोग क्यों नेविगेटर लगाते हैं कभी आज के दौर में? कि ये हमें बता देगा किधर रश ज़्यादा है, ये शॉर्टेस्ट वे है, ये लॉन्गेस्ट है, ये वो है। तो जो नेविगेटर के साथ चल रहा होता है ठीक जाता है, जरा सा रास्ता गलत लेना तो वो आपको क्या कहते हैं, टेक अ यू टर्न प्लीज, टेक अ यू टर्न प्लीज। ये नेविगेटर कुरान है, कुरान इज अ नेविगेटर। कुरान कहते हैं, आप पढ़ेंगे आगे सूरह बनी इसराइल में भी आता है, सूरह कहफ में भी आता है, ये कुरान लोगों को सीधा रखता है। तो आप इस कुरान के साथ रहें और अपनी हिदायत की फिक्र करें, और साथ साथ देखा करें। हर रात सोने से पहले 2-3 मिनट के लिए अपना मुहासबा कर लें। नफ्स की इसलाह के 4 तरीकों के नाम पर एक लेक्चर भी है, उसी में से एक बात है मुहासिबा मुशारिता। अपने साथ शर्तें लगा लो, अपना मुहासबा करो। अगर मिसाल है कि मेरी फजर कजा होगी तो मैं रोजा रखूंगी, अगर मैंने जुबान से किसी को तकलीफ दी तो मैं फिर 100 दफा अस्तगफार करूंगी, अगर मैंने माल से किसी को नुकसान दी तो मैं सदका दूंगी। ये सारी चीजें अपने आप को ठीक करने की होती हैं। फिर इसी तरह गैर मुस्लिमों की आलमी यानी यूनिवर्सल और इंटरनेशनल प्लानिंग्स और मनसूबाबंदी के मुतालिक आगाह रहिए। मोमिन चुस्त होता है। आप कहते नहीं हम अखबार नहीं पढ़ते जी, अखबार पढ़ना गुनाह, हम नहीं खबरें सुनते जी, हमें नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। देखिए अगर आप हालात हाजरा से आगाह नहीं, मैं ये नहीं कहती घंटों अखबारें पढ़ते रहे और आज के दौर में खबरों के नाम पे सारा दिन घरों में टीवी ही चलता रहे, लेकिन थोड़ी सी हौट नो होनी चाहिए। अल्लाह के नबी कैयस थे, आप दुश्मनों की चीज़ों पर भी नजर रखते थे, दोस्तों पर भी रखते थे। ये जो गजवे तबूक के लिए आपने फौज तैयार की थी, ये कैसे की? खबर मिल गई थी कि उधर कुछ हमारे खिलाफ काम हो रहा है तो आप चल पड़े। तो यहाँ एक खास हद तक आगाह रहना चाहिए, और आप अपनी नस्ल को, नई नस्ल के तकाजों को भी समझें, वो बच्चे किस माहौल में है। अब आप तो सऊदीया में, आप तो माशाल्लाह इतने प्यारे सिक्योर माहौल में है ना, मेरे मुखातिबीन में तो वो सिस्टर्स भी हैं जो इस वक्त पूरे वेस्ट और पूरी दुनिया से सुनती हैं, कि उनको अपने बच्चों के हालात को समझना चाहिए, कितना उन पे प्रेशर है, किस तरह वो बुली किए जाते हैं, कैसे वो बाहर की दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बातें सुनते हैं। तो लिहाजा सारों को सुन के चीज़ों को फिर अल्लाह से मदद मांगते हुए अपने बच्चों के दीन ईमान की हिफाजत कीजिए। इसी तरह हलाल और हराम खानों के अहकाम को भी खुद जानना है और दूसरों को भी बताना है। कुरानी रहनुमाई, शहवात और शुबहात पर ध्यान नहीं रखना, ये याद रखिएगा। देखिए ये चीज़ आप अभी समझ लें ताकि पूरे पारे को फिर आप और भी इंजॉय कर सकें, कि आज के दौर में शयातीन दीन के नाम पर जो फितने खड़े करते हैं ना, उसमें से एक फितना जिसकी वजह क्या है, शुबहात पैदा करते हैं, डाउट्स, और दूसरा फितना शहवात, एपिटाइट्स। ये दो मजबूत हथियार हैं शैतान के, इनके जरिए से वो हक के रास्ते से हटाता है। शहवात को जिंदगी का असल मकसद बना के पेश करता है। आज कितने ही हमारे अपने मुसलमान हैं जिनकी सिर्फ जिंदगी का मकसद फानना है, लस्ट, मौज करो, मन मस्ती, आज उधर जाओ आज उधर जाओ। फिर शैतान क्या कराता है, सारा मजा तो जी गुनाहों में है। कोई जरा सा मजहब की तरफ जाए तो कहते हैं ये क्या मौलवी बन रहे हो, मजहबी हो जाओगे तो नाकाम हो जाओगे। और ये जो शैतान के ये सारे तरीके रास्ते हो गए, शादी से पहले लिविंग टुगेदर देख लो, इतना बड़ा फैसला है शादी, ऐसे ही ना कर लो, थोड़ा सा ट्राई कर लो, शादी से पहले जरा दोनों लड़का लड़की कुछ रहे, देखे, रिहर्सल करे, एक दूसरे को समझ ले, फिर शादी के लिए तैयार होना। और होता क्या, अभी शादी से पहले 4 साल भी इकट्ठे रह लेंगे और शादी के बाद 4 माह के बाद तलाक, क्योंकि एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिश्ता और होता है, उसमें तो सिर्फ फन ही फन होगा। और जब वो शौहर बीवी बनते हैं तो फिर आप देखते हैं जिम्मेदारियां भी हैं, अरिजालु कवामुन भी है, फसाले खातुन खानेदात भी है। इसीलिए आज आप देखिए तलाक का रेशो कितना से आता है। तो आप अपने आप को या इवन अपनी मदर्स को सोचिए, भोली भाली शादियां होती थी, कईयों ने तो देखा ही शादी वाले दिन है शौहर को, लड़की को नहीं देखता था, मर्द शादी होती थी, भोली भाली शादियां कामयाब थी। आज पहले से सारे तौर तरीके सोच समझ के की भी शादियां नाकाम है। और आज आप देखिए कि इस शोशे को समझिए, आज जिना को कबूल कर लिया गया। कल आज से 10-15 साल पहले लोग जिना में बोलती भी नहीं थी दरसों में, आपको पता है, कोई भी नहीं था बोलता, इशारों में बातें होती थी, अखबारों में इज्जत का चोर लफ्ज आता था, इज्जत लुटना कनाए थे। और आज माँ कहती है बेटा यही किसी से दोस्ती करना जिससे भी कल शादी कर लो, यानी पहले एक्सपेक्टेड था फिर एक्सेप्टेड हो गया। हाँ नहीं, मेरा बेटा बहुत नेक है, वो सिर्फ उस लड़की से बातें करता है जिसके साथ वो सीरियस होता है, वो फ्लर्ट नहीं करता, ये है ज़ुखरुफ़ अल-क़ौली ग़ुरूरा, ये शैतान की चिकनी चुपड़ी बातें। तो शक इस तरह पैदा किया जाए कि लोगों को दीन मुश्किल लगे। आज लोग कहते हैं हाय इस्लाम बड़ा सख्त है, बारबेरिक है, हाय मुसलमान इतने बेचारे, हाय रोजे रखते हैं ये बच्चे। आपके बच्चों को बाहर की दुनिया से क्या क्या नहीं सुनना पड़ता, टेररिस्ट का लफ्ज आए तो मुसलमान का नाम है, कोई जहाज गिर जाए तो गम पड़ जाता है ये किसी मुसलमान ने गिरा दिया, कोई बिल्डिंग गिर जाए तो मुसलमान का नाम पड़ता है। और शक हमेशा उसके जरिए पैदा किया जाता है जिसका आपके दिल में कोई मुकाम होता है। तो अल्लाह सुबहाना तआला ने यहाँ ये बात करके आपको मुझे बता दिया, तम्मत कलिमत रब्बी का सिदकम वअदला, अल्लाह की बात सच्ची है और अल्लाह से ज्यादा सच्चा कोई नहीं। वमन नस्तकु मिन अल्लाह की हदीस, साइंस गलत साबित हो सकती है, तारीख गलत साबित हो सकती है, हमारा ईमान है कि कुरान हमेशा सच्चा है। इसको किसी झूठे सहारे की जरूरत नहीं है कि साइंटिफिक तफसीरें इसकी करेंगे तो फिर कुछ बात होगी। कल तक डार्विनिज्म में लोग PhD करते थे, आज ज़ुखरुफ़ अल-क़ौल है, वो झूठ था, कैमोफ्लेज किया हुआ था, वो जो बंदर की एक हड्डी और जिस्म पेश किया जाता है ना, आज प्रूवन है ये फैक्ट कि वो कैमोफ्लेज था, खुद ही किसी का जबड़ा किसी का जोड़ के नकली इंसान बनाकर उसे दिखा के कहा देखो बंदर से इंसान बना है। तो आज इन चीजों को समझिए, इस्लाम की ये बुनियादी चीज है। और यहाँ ये बात आपके मेरे लिए बड़ी साफ सुथरी होनी चाहिए कि इस्लाम का शुआर लिख लें, तीन चीजों की हिफाजत अल्लाह ने लिखी अपने ऊपर। अदल की वजह से इस्लाम दूसरे तमाम मजाहिब से नुमाया है, अल्लाह का हक दो, नफ्स का हक दो और मखलूक का हक दो। अल्लाह से ज्यादा हक वालों को हक तोल तोल के कोई नहीं दे सकता। इसके अलावा बाकी सब मजाहिब में अफराद और तफरीत है। आज न्यूक्लियर फैमिली के नाम पर देख लीजिए, दो बच्चे खुशहाल घराना, सास ससुर किधर गए, घर के बुजुर्ग किधर गए। इस्लाम कहता है हर घर ओल्ड होम है। तो इसी तरह से याद रखिए वो मुआशरे जिन्होंने इन खराबियों को देखा आज वापस पलट रहे हैं। एक आपका मेरा जमीर होता है ना, हमारी इंस्टिंक्ट होती है, इसी तरह कौमों का इज्तमाई जमीर भी होता है। आज पूरी दुनिया भी इस चीज को कहने पे मजबूर हो गई है कि सूद को खत्म करो, 0% सूद के रेट पे कौमें आ चुकी हैं। शायद जापान ने तो सूद को वैसे ही मना कर दिया, क्यों, वो सोच चुके हैं कि सूद में कोई मजा नहीं है, ये एंड पे गलत ही होगा। अब वेस्ट भी जाग रहा है, उनको पता है कि इस्लामी तर्ज जिंदगी अच्छा है और जो वेस्टर्नाइज लाइफ स्टाइल है वो गलत है। आज हम ठोकरे खा रहे हैं मोहम्मद अरबी के मानने वाले, हमारे पास तो हीरे और हम कांच वालों के ऊपर ब्रश करते हैं। तो अल्लाह ने जो प्यारा निज़ाम दिया उसको लीजिए, और ये अक्सरियत अक्सरियत लोग क्या कहते हैं वो क्या कहते हैं इसको छोड़ दीजिए, कॉन्क्रीट नॉलेज लीजिए और ईंटों की तरह जुड़ जाइए। दीन के मामले में आपको क्या नहीं पता, आप क्यों हर वक्त सवाल पूछते रहते हैं, आप क्यों कंफ्यूज होते हैं, उम्रे पे जाते हैं सवाल उठते हैं, रमजान आएगा 10 वाले क्यों भाई, आप 15, 20, 25, 30, 40 साल की खातून हो चुकी हैं, क्या आपको अपने बारे में भी सही नहीं पता। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये कह के ना कि जाहिर और बातिन की सारी चीजों को सेट कर दो तो आपको मुझे अपनी जिंदगी को खूबसूरत करना है, अपनी तन्हाइयों को पाक करना है, सोचों को पाक कीजिए, ख्यालात का तस्किया कीजिए, अपने इरादों को पाक करें, बड़ा सोचें, अल्लाह आपसे कोई बड़ा काम ले और अंदर और बाहर से पाक होते हुए करें। एक होता है घर में वाइट वॉश करा दी, लेकिन थोड़े दिन बाद दोबारा देखिए अंदर से फिर कुछ ना कुछ निकल आएगा। तो इस्लाम आपको मुझे अंदर बाहर से खूबसूरत करता है। इन सारी आयतों को पढ़ते हुए आपका मेरा अपने साथ एक वादा होना चाहिए, कि अल्लाह मैं पाक हूँ, मैं किसी की गंदगी को कबूल नहीं करूंगी और कभी नहीं कहूंगी कि मेजोरिटी इज अथॉरिटी। अकेले चलिए, सही रास्ते पे जाइए, सारे गलत जाएंगे तो क्या आप अपना रास्ता बदल देंगे? इसी तरह गौर व फिक्र की चंद बातों में फसादी इंसान जिन्नों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। याद रखिए, है तो ये अशरफुल मखलूक, लेकिन जब शर फैलाने पे आता है तो ये तो जिन्नात को भी मात कर देता है। आखिरत को भूल जाने वाले और रसूलों और हक बात कहने वालों के मुखालिफ हो जाते हैं। इल्म और अदल वाला शख्स रसूलों की तालीमात से ज्यादा करीब होता है। कशफ और इल्हामात को कुरान और सुन्नत की कसवटी पर जांचना है। ऐसे ही नहीं किसी को कशफ हो गया, उसको इल्हाम हो गया और आप उसको बाबा जी बनाकर उसकी पीरी मुरीदी शुरू कर दें। इसके पीछे भी एक कहानी होती है। और अल्लाह सुबहाना तआला आपको मुझे एक बड़ा प्यारा ख्वाब दिखाते हैं, और वो क्या, आयत 125, फमै युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल्इस्लाम। आज इसको सुनते वक्त एक दुआ कीजिए, रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। तो जिस शख्स को अल्लाह ताला रास्ते पे डालना चाहता है, पहले दुआ करे अल्लाह मुझे रास्ते पे डाल दे। इसके सीने को इस्लाम के लिए कुशादा कर देता है, और जिसको बेराह रखना चाहता है इसके सीने को बहुत तंग और घुटा हुआ कर देता है। अल्लाह हमारी नस्लों को भी बेराह होने से बचा ले। अब जिसका सीना भींचता है उसका हाल क्या होता है? जैसे कोई आसमान पर चढ़ता है, इसी तरह अल्लाह ताला ईमान न लाने वालों पर नापाकी मुसल्लत कर देता है। और यही तेरे रब का सीधा रास्ता है। हमने नसीहत हासिल करने वालों के वास्ते इन आयात को साफ साफ बयान कर दिया है। ऐसे लोगों के लिए क्या है? वहाजा सिरात रब्बिका मुस्तकीमा। इन लोगों के वास्ते इन रब के पास क्या है? सलामती का घर है, और अल्लाह ताला इनसे मोहब्बत करता है और इनके आमाल की वजह से। लहुम दारुस सलामीन दर रब्बिहिम वहुवा वलीयुहुम बिमा कानू यामलून। अल्लाह हमको मुझे सलामती अलग घर में बुलाता है। अल्लाह ने जन्नत का नाम दारुस्सलाम रखा, और उसके पहुंचने का रास्ता इस्लाम है। जितना इस्लाम पे चलते जाएंगे, जन्नत सीधी आपकी लोकेशन के अंदर होगी। अब कयामत के दिन क्या होने वाला है, कुछ मनाजिर देखते हैं। व यौम यख्शुरुहुम जमीया, और जिस रोज अल्लाह ताला तमाम मखलूकात को जमा करेगा। कहे गए जमाते जिन्नात, यानी ये जमात जिन्नात की, तुमने इंसानों में से बहुत से अपना लिए। जो इंसान इनके साथ ताल्लुक रखते थे वो कहेंगे, ए हमारे परवरदिगार, हम में से एक ने दूसरे से फायदा हासिल किया था, और हम अपनी इस मुय्यन मियाद तक आ पहुंचे जो तूने हमारे लिए मुय्यन फरमाई थी, यानी जो हमारे नसीब में तूने लिखा था वो हमने ले लिया। अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुम सब का ठिकाना दोजख है, जिनमें तुम हमेशा रहोगे। हाँ, अगर अल्लाह ही को मंजूर हो तो ये दूसरी बात है। बेशक आपका रब बड़ी हिकमत वाला, बड़े इल्म वाला है। क्या पता चला, इंसानों की तरह जिन्नों का भी हिसाब होगा। इससे यही पता चलता है। वकज़ालिका नुवल्ली बादा ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यकसिबून। और इसी तरह हम बाज़ कुफ़ार को बाज़ के करीब रखेंगे इनके आमाल के सबब। दोबारा जिन्नात को पुकारा जा रहा है, या माशर अल जिन्नी वल इंस, ए जिन्नात और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम में से ही पैगंबर नहीं आए थे जो तुमसे मेरे अहकाम बयान करते और तुमको इस आज के दिन की खबर देते? वो सब अर्ज करेंगे कि हम अपने ऊपर इकरार करते हैं और इनको दुनिया की जिंदगी ने भूल में डाले रखा, और ये लोग इकरार करने वाले होंगे कि वो काफिर थे। ये इस वजह से है कि आपका रब किसी बस्ती वालों को कुफर के सबब ऐसी हालत में हलाक नहीं करता कि इस बस्ती के रहने वाले बेखबर हों। या नोट कीजिएगा, वाहलुहा गाफिलून, ये आयत बताती है कि ज्यादा सख्ती उनके साथ होती है जिनको पता है और इसके बावजूद भी वो नहीं मानते। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होते हैं कि जान लिया, अमल ना किया तो पकड़े जाएंगे, इसलिए हम नहीं जानते, तो जहालत की मौत मरेंगे। सेफेस्ट वे क्या है कि जब अल्लाह सुबहाना ताला आपको इल्म का मौका दे, इल्म लीजिए, जैसे आज माशाल्लाह आप लोग आकर बैठ गए, अल्लाह ने आपको मौका दिया, आप इसको कबूल कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जब इल्म आ जाए तो फिर आप क्या करें, उस पे अमल की कोशिश शुरू कर दें। गिरते पड़ते चलते फिरते अपने आप को अल्लाह से जोड़ते जोड़ते अमल करते जाइए, और हर दिन अल्लाह से कहें कि अल्लाह मेरी हिदायत को बढ़ा दे, अल्लाह मज़िदनी हिदाया, अल्लाह ज़िदनी आमाले सालिहा। मालो दौलत से ज़्यादा हिदायत की फ़िक्र कीजिए, आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा कि अल्लाह सुबहाना ताला ऐसे लोगों को फिर हिदायत में और से और बढ़ा देगा, और अल्लाह हमें बेखबरी से बचा दे। हर एक को इसके अमाल के सबब दर्जे मिलेंगे, इसको हाईलाइट कर लीजिए। ख्वाहिशों से नहीं, अमाल के मुताबिक दर्जे मिलते हैं, जितना अमल उतना दर्जा। आप देखिए, एक बच्चा जितना अच्छा इम्तिहान में पढ़ेगा लिखेगा उतने ही दर्जे मिलेंगे ना। तो वलिकुल इन दर्जात मिम्मा अमीलू, इस लफ्ज़ को हाईलाइट कीजिए, मिम्मा अमीलू। ख्वाहिश नहीं, इरादा नहीं, दुआएं नहीं, अमल करना होगा। वमा रब्बु कभी गाफिल अम्मा यामलून। दुनिया में हो सकता है कोई पेपर में अच्छा लिख दे, लेकिन उस्ताद को गलती लग सकती है, अल्लाह को गलती नहीं लगती। जो आपने किया होगा, कल आप डंके की चोट पे जाके पूछ सकते हैं, अल्लाह मेरी वो नेकी किधर है, अल्लाह मेरी वो तहज्जुद किधर है, अल्लाह मेरी वो कुर्बानी किधर है, मेरी वो हिजरत किधर है। अल्लाह ताला आपको एक एक चीज गिन के देगा, क्योंकि आपका रब उनके अमाल से बेखबर नहीं, और आपका रब बिल्कुल गनी है, रहमत वाला है। अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले। इसको जरा सुनते वक्त दुआ करें कि अल्लाह हमसे ही अपने दीन की खिदमत ले ले, हमें बदलना नहीं। क्योंकि पीछे सूरह मायदा में पढ़ के आए ना कि वह मैयतदन दीन ही, जो अपने दीन से फिरेगा अल्लाह ताला उसकी जगह दूसरे लोग ले आएगा। अल्लाह को क्या परवाह है, आप ना जाएं, कल आपसे भी ज्यादा लोग आ जाएंगे इन कुर्सियों पे। मैं ना पढ़ाऊं, कल कोई और इस कुर्सी पे आएगा, तो किसी के पास कोई फख्र ना हो। अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं, ये शयुस्खिबकुम, और अगर वो चाहे तो तुम सबको उठा ले, और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे, जैसा कि तुमको एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया है। जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है वो बेशक आने वाली है, और तुम आजिज कर नहीं सकते। कुल या कौमे मलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल। इस पे भी गौर कीजिए, ये थे सिराज मुनीरा। हमें आपको नहीं कहा कि तुम अमल करो, मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप ये फरमा दीजिए कि ऐ मेरी कौम, तुम अपनी हालत पर अमल करते रहो, मैं भी अमल कर रहा हूँ, और असर उसी की बात में होता है जो खुद अमल करता है। ये याद रखें, मजीद इल्म बढ़ाने से बेहतर है कि आप अमल बढ़ाइए, फिर पढ़ाना शुरू कीजिए। क्योंकि इल्म के तो आप पहाड़ बन गए, और अमल में आप कंकर भी नहीं है, तो आपकी बात में असर नहीं आएगा। इसीलिए फरमाया, बस जल्द अब तुमको मालूम हुआ जाता है कि इस आलिम का अंजामे कार किसके लिए नाफे होगा। ये यकीनी बात है कि हक तलफी करने वालों को कभी फलाह ना होगी। इसको हाईलाइट कीजिए, इन्नहु ला युफ्लिहुल ज़ालिमून। किसी पे जुल्म किया तो माफी मांग लीजिए उस बंदे से, अल्लाह के हक में शिर्क वाला कोई जुल्म किया तो अल्लाह से माफी मांग लीजिए, अपना कोई हक तलफ किया तो खुद से माफी मांग लीजिए। वरना याद रखिए, फलाह की उम्मीद रखना ना समझी है। आगे दोबारा फिर वही मौजू जो पारे का भी है और सूरत का चल रहा है, मुशरिकीन ने मक्का की कुछ और बिदात। वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्सि वल अनाम, और अल्लाह ताला ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, इन लोगों ने इनमें से कुछ हिस्सा अल्लाह का मुकर्रर किया, और खुद कहते हैं ये तो अल्लाह का है और ये हमारे माबूदों का है। फिर जो चीज़ इनके माबूदों की होती है वो तो अल्लाह की तरफ नहीं पहुँचती, और जो चीज़ अल्लाह की होती है वो इनके माबूदों की तरफ पहुँच जाती है। देखिए कैसे बेवकूफ है। सा अमा यहकुमुन, क्या बुरा फैसला वो करते हैं। इसी तरह वकजा अली कजैन अली कसीर मिनल मुशरिकीन कत्ल औलादिहिम, और इसी तरह बहुत से मुशरिकीन के ख्याल में इनके माबूदों ने इनकी औलाद के कत्ल करने को काबिले तारीफ बना रखा है, ताकि वो इनको बर्बाद करें, और ताकि इनके दीन को इन पर शुबे वाला कर दें, यानी मुश्तबह कर दें। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ये ऐसा काम ना करते, तो आप इनको और जो कुछ ये गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। मक्का वालों की भी जरा बंदर बांट देखिए, अपनी खेतियों के तीन हिस्से करते हैं। आप इमेजिनेशन में लाइए, एक दो तीन। इस खेती के हिस्से से जो फसल आएगी उसका नफा अल्लाह के नाम पे दे देंगे। इस खेती जो मिडल वाली है, इसके हिस्से के जो नफा या प्रॉफिट है, ये हम अपने बुतों को भेंट चढ़ाएंगे, और ये जो तीसरा है ना, ये हम खुद अपनी जरूरियात पे लगा लेंगे। किसी साल ऐसा होता कि अल्लाह वाले हिस्से की खेती पे को वबा आ जाती, फसल ना बनती, नफा ना होता, तो एंड पे कहते हम क्या करें, नहीं आया तो ना सही। लेकिन अगर किसी और साल में अपने बुतों और बुजुर्गों के लिए करते थे डिवोट, उसमें कर को कीड़ा पड़ जाता, आप सोच पा कहते ना 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 ये नहीं, फिर उस साल अल्लाह वाले हिस्से का प्रॉफिट बुतों को दे आते हैं। ये है अल्लाह ने इधर बताया, आज आप और मैं क्या करते हैं। आइए जरा तदब्बुर और अमल के चंद नुकते नोट करते हैं। सबसे पहले आयात पे अमल किया कि हिदायत की दुआ मांगनी है, और हक के लिए सीना खुलने की दुआ करनी है। आज दुआ करे सीना खुल जाए, क्योंकि आज के बारे में बहुत कुछ है जिस पे आपको मुझे अमल करना है। जिन्नात की तरफ से हर बुराई और शर से पनाह की दुआ मांगे, और बेहतरीन सूरत फलक और नास। नेकी का हुक्म देना और बुराई और जुल्म से रोकना, पुराने पाक से रहनुमाई, बकसरत नेक अमाल करने हैं, और इसी तरह से अल्लाह की रहमत शामिल हाल होगी तो हम भी अल्लाह के वली बन जाएंगे। अल्लाह तआला का इनकार करने वाले दिल शैतान की तफरी गाहें, इसको हाईलाइट करें बल्कि लिख लें, तफरी करता है शैतान उन दिलों में जाकर जो अल्लाह को नहीं मानते। जालिम दुनिया और आखिरत में नाकाम होंगे, अल्लाह का वादा नहीं बदल सकता। गौर व फिक्र की बातें, हिदायत मिलने की निशानी क्या है? नेकी के कामों से मोहब्बत होने लगती है, इस दुनिया से दिल उठने लगता है और आखिरत की याद आने लगती है। इसी तरह से बंदे का दिल खिला रहता है, इबादत में मजा आने लगता है, कुरान का सीखना सिखाना अच्छा लगने लगता है, अल्लाह तआला के अहकाम की हिकमतें नजर आने लगती हैं, और अपने से ज्यादा दूसरों की हिरस लग जाती है कि अल्लाह इनको भी इससे जोड़ दे। तुम भी चखो, तुम भी देखो, आपका दिल खुला है कि नहीं, अपने आप को इस चीज में रख लीजिए। देखिए, हिदायत की प्यास फितरत में रखी हुई अल्लाह ने, मगर बहुत देर तक पानी ना पिए तो प्यास बुझ जाती है। रोजे में ऐसा अक्सर होता है, जो लोग बहुत अरसा तक हिदायत पे नहीं आते ना, फिर उनके अंदर से वो एहसास भी मिट जाता है। आपने मैंने ऐसे लोगों के लिए ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमें दूसरों की हिदायत का जरिया बना दे, हमें हिदायत का चलता फिरता चिराग बना दे, वही के नूर को फैलाने के लिए दुनिया को छोड़ना नहीं, बल्कि अपने अपने औरा में, अपने अपने दौर में, अपने अपने इर्द गिर्द के माहौल में इस दीन को देना है। और याद रखिए कि मक्का वालों के ये हलाल और हराम के जो सांचे हैं, इनको हटाकर कुरान और सुन्नत ने जो हलाल दिया ना, उसको लीजिए। क्यों? इसलिए कि हलाल का असर सिर्फ हमारे जिस्म के गोश्त से नहीं होता, यानी हलाल से सिर्फ गोश्त नहीं पैदा होता, इससे हमारी बॉडी के अंदर सोचें, दिमाग में ख्यालात, हमारे इंजाइम्स बनते हैं। जो खाएंगे वही मिलेगा। गाड़ी में कचरे वाला पेट्रोल डाल दें तो गाड़ी झटके नहीं देती, सुप्रीम डालते हैं तो गाड़ी फरफर भागती है। तो हमेशा अपने अंदर सुप्रीम डालिए, कोई ऐसा गंदा पेट्रोल मत डालिए जिससे कचरा हो। जो गलत खाएगा ना, वो जरूर गलत बोलेगा, फिर गलत ख्वाहिशात होंगी, और एक से एक दूसरी बुराई जो है वो इंसान के अंदर आती है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस दारुल गुरूर से दूर कर दे और दारुल खुद की तरफ हमारी तवज्जो दिला दे। शुरू में मुश्किल लगेगा, लेकिन जितना आगे जाते जाएंगे अंदर से अंदर, आपको फिर अच्छा लगेगा। सैंडविच के किनारे सख्त होते हैं, अक्सर बच्चे उतार के फेंक देते हैं। पिज्जा खाएंगे ना तो किनारे खुश्क होते हैं, अंदर से मिडल वाला वो जो एक बड़ा टेक्सचर सा होता है ना, वो मजे का होता है। इस्लाम किनारों पर रहकर जो भी लेंगे ना, बड़ा बोझल लगता है। हाय ये सब मुझे देख रहे हैं, हाय मैंने सर पे दुपट्टा ले लिया, यानी अब उतार देती हूँ। देख, शुरू में आप ऐसी कॉन्फ्लिक्ट से गुजरते हैं, चलते जाइए चलते, एक वक्त आएगा आप कहेंगे मैं सर से पाँव तक छुप के भी लोगों के सामने ना हूँ, ये अल्लाह के दीन का वादा है। तो खुशी खुशी फिर आप इस्लाम को इंजॉय करने लगते हैं। फिर इसमें कत्ले औलाद की भी बातें आई हैं, तो तीन वजूहात पे बच्चों को कत्ल करते थे। एक तो गुर्बत के मारे से इफलास, इसका तस्कर आगे आएगा, इसी तरह बेटियों को ज़िबा करते थे, और तीसरा तरीका था भेंट चढ़ाते थे अपने बुतों की, जो आज भी मौजूद है। लिखें एक जुमला, तौहीद से हटने वाला, यानी अकीदा है तौहीद से हटने वाला औलाद का दुश्मन हो जाता है, औलाद की मोहब्बत भी नहीं रहती, फिर दीन बिदत और बिदत दीन बन जाता है। दीन पर अमल करते हुए 10 सवाल पूछते हैं, और रस्मों पे अमल करते हुए एक सवाल भी नहीं पूछते कि ये क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे। दीन को एंटीक बनाकर सजा देते हैं किसी भी कमरे में ड्राइंग रूम के नाम पे, और रस्मों को दीन बनाकर अपनी जिंदगी में ले आते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह सुबहाना तआला इनायात में ये दावत देते हैं कि तुम सोच लो कर क्या रहे हो। फिर इसी तरह जन्नत दारुस्सलाम है, इस दुनिया में दारुस्सलाम सिर्फ उसको मिलेगा जो शरीयत पे अमल करेगा। यहूद के ऊपर शरीयत सख्त क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने सर को झटका। आप सर झुकाकर शरीयत की हदूद के अंदर रहिए, ये आपकी सिक्योरिटी और आपकी प्रोटेक्शन बन जाएगी, और फिर जैसे अमल उतने दर्जे। दूसरी कौमों के जानशीन बन जाने में अहले अकल के लिए सबक है कि क्या हम बंदर, क्या हम दूसरों को फॉलो करें, यानी जुमले को लिखिए कि दूसरी कौमों के नक्शे कदम पे चलना खुद को बंदर बनाना है, क्योंकि नक्काली तो बंदर करता है। फिर इसी तरह दूसरी कौमें कल थीं, आज आप उनकी जगह पे आ गए, इस पे गौर कीजिए। औलाद का कत्ल ना करो, कुरान सजा से पहले हुक्म इलाही को याद दिलवाता है, और इसके बाद फिर आगे इनकी कुछ और बातें। वकालू हाजी अनाम व हर्सुन हिज्र, और वो अपने ख्याल पर ये भी कहते हैं कि ये मवेशी हैं और खेत हैं जिनका इस्तेमाल हर शख्स को जायज़ नहीं कि इनको कोई खा सकता हो सिवाय इनके जिनको हम चाहें, और मवेशी हैं जिन पर सवारी या बोझ लादना हराम है, और मवेशी हैं जिन पर ये लोग अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते महज अल्लाह पर झूठ यानी बुख्तान बांधने के तौर पर। अभी अल्लाह ताला इनको इनके झूठ की सजा दिए देता है। आज हमारे यहाँ भी ऐसी बेकार किस्म की फरसूदा चीज़ें मौजूद हैं, और वो कहते हैं कि जो चीज़ इन मवेशियों के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है, यानी बकरी के पेट में जिंदा बच्चा निकला है तो मर्द खाएंगे, और अगर मुर्दा बच्चा निकले तो चलो औरतों तुम भी खा लो। आज हमारे कल्चर में कई दफ़ा औरतों के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन होती है ना, हल्की ख़राब चीज़ औरतों को खिला दो, बेटियों को खिला दो, और अच्छी अच्छी चीज़ें बेटों को खिला दो, तो ये कुछ उसी किस्म की कहानी थी। और इसी तरह से ऐसी चीजें हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा है तो इसमें सब बराबर हैं। अभी अल्लाह इनको इनकी गलत बयानी की सजा दे देता है, बिला शुबा वो हिकमत वाला और बड़े इल्म वाला है। यानी इन बातों को सुनते हुए तबीयत पे बोझ आ रहा है। आप नोट करेंगे कुरान की वो आयात जिनको पढ़कर सुकून मिले ना, वो अल्लाह की शरीयत की होती हैं, और ऐसी बातें जिसमें शैतानी बातें या जो कुछ हम पढ़ रहे हैं इस वक्त शरीयत के मुकाबले पे उनकी ख्वाहिशात की बातें, तो इसको पढ़ते हुए ना तबीयत पे बोझ आता है। इसीलिए फरमाया कद खसीर अल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़ख़म बिग़ैरि इल्म, वाकई खराबी में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को महज बराहे हमाकत बिला किसी सनद के कत्ल कर डाला, और जो चीज़ इनको अल्लाह ने खाने पीने के लिए दी थी इनको हराम कर लिया महज अल्लाह पर झूठ बांधने के तौर पर। बेशक ये लोग गुमराही में पड़ गए और कभी राह रास्त पर चलने वाले नहीं हुए। आज हम मुसलमान किसी न किसी हद तक इसी तरह की शरीयत के पुजारी हैं। आज भी अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, सास दादी सास फला, तो आप देखिए कि वो वही रस्में करना पसंद करेंगी जो शुरू से होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कुरान फैल रहा है, अल्लाह ने आप जैसे लोगों के दिल दिमाग कुरान के लिए जोड़ दिए हैं। आने वाली नस्लों को साफ सुथरा दीन दीजिए, प्योर नॉलेज, और वो कुरान और सुन्नत का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आयत 140 पे रुक हुआ,